आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
हमारी सेना के जवान हमारी आन बान शान हैं। वो अपना सब कुछ इस देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर देते हैं, जिससे हम सुकून और हिफाजत से रह सकें। परंतु अक्सर ऐसा कुछ सुनने को आ जाता है जब हमारे सेना के जवान अपनी सेवा पूरी करने के बाद भी किसी दिक्कत में हैं। ये देश के लिए युद्ध लड़ चुके हैं, अपनी जवानी दे चुके हैं, ऐसे में हमारा भी दायित्व बनता है। गौरव शुक्ला जी के पिताजी स्वयं कारगिल वॉर वेटरन हैं। गौरव ने इस बात को महसूस किया और देश के वॉर वेटरन्स के लिए सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट अवर हीरोज की स्थापना की। इसके माध्यम से वो ऐसे पूर्व सैनिकों की मदद करते रहते हैं। एक दशक हो गया और गौरव ने तमाम ऐसे गुमनाम वेटरन्स की मदद करी और एक नई उम्मीद जगाई है। इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, गौरव बताते हैं।
जय हिंद। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने श्रोताओं से जुड़ने का अवसर दिया। मैं 1999 कारगिल वॉर वेटरन का बेटा हूं, जिन्होंने 28 साल इंडियन आर्मी के द्वारा देश की सेवा की और सपोर्टर हीरोज का को फाउंडर भी हूं। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे पिताजी ने अपनी जवानी फौज में दी है और मैंने अपनी आंखें फौज में खोली हैं। तो मेरा पहला जो प्यार था वो फौज था। तो मैं फौज ज्वाइन करने के लिए, कमीशन लेने के लिए मैंने कई बार कोशिशें की लेकिन नहीं हो सका। और नहीं होने के बाद जिंदगी की शुरुआत कहीं से तो करनी थी, तो मैंने अपनी जो मास्टर्स है वो मैंने जर्नलिज्म में की। मैं पैदाइश फरीदकोट पंजाब की हूँ, जिसमें थे तो मैं पंजाब में पैदा हुआ था। और गुवाहाटी में मेरी प्री स्कूलिंग हुई असम गुवाहाटी, और मेरठ में मेरी 5th से लेकर 6th तक पढ़ाई वहाँ पे हुई। के बाद 7th से लेकर 12th तक मैं आर्मी स्कूल धौलाकुआ नई दिल्ली में पढ़ा। ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, मास्टर्स मैंने नोएडा से की और आज मैं सपोर्टर हीरो के माध्यम से पूरे भारत में काम कर रहा हूँ। आप ही कहें कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बात करीबन 2014 एंड और 2015 के शुरुआत की आप कह सकते हैं। उस समय एक शानदार मुहिम चल रही थी जंतर मंतर दिल्ली में, ORP, वन रैंक वन पेंशन। मैं उस समय मुंबई में काम किया करता था और अपने परिवार से मिलने के लिए छुट्टी पे दिल्ली आया हुआ था। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि टीवी न्यूज चैनल दिखाते हैं कि वन रैंक वन पेंशन सबको मिल गई है, लोग बहुत खुश हैं और सब अपने अपने घरों पे जा रहे हैं। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पापा आपको मिल गई? पापा का कहना था कि मुझे मिली नहीं, औरों का मुझे पता नहीं। एक दिन किसी रिटायर्ड हवलदार ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो लाइव की, जिसमें उन्होंने बोला कि यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, न्यूज चैनल में दिखाना बंद कर दिया है और हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। अब मेरे लिए बड़ा प्रश्न ये था कि जो मैंने टीवी में देखा कि सब खुशी खुशी जा चुके हैं वो सत्य है या इस वीडियो में जो एक रिटायर्ड हवलदार बोल रहा है वो सत्य है। घर पे खाली था, मैंने कहा चलो जंतर मंतर चक्कर मार के आते हैं। मैं जंतर मंतर चला गया। जब मैं वहां गया तो मैंने वहां पे एक मिनी भारत देखा। कोई राजस्थान से था, कोई दिल्ली से था, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई उत्तराखंड से, कोई हिमाचल से, कोई नॉर्थ ईस्ट से, जो जहां से आ सकता था वो वहां पे गया। कोई ड्यूरिंग सर्विस विडो हुई है, कोई आफ्टर रिटायरमेंट विडो हुई है, कोई ड्यूरिंग सर्विस डिसेबल हुआ है, कोई आफ्टर रिटायरमेंट डिसेबल हुआ है, किसी की पेंशन कम आ रही है, किसी की आ ही नहीं रही है। 100 लोग 100 मुद्दे 100 कहानियां। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हम मीडिया को कहते हैं अपना चौथा पिलर, और अगर चौथा पिलर अपना काम किसी कारण से सही ना, तो फिर आदमी कहाँ जाएगा। ये तो फॉर्चुनेट मैं था कि मैं उस चीज को देखने पहुंच गया, खाली था दिल्ली में। लेकिन अगर जो दूर दराज इलाकों में है उन्हें अगर चैनल्स, न्यूज़पेपर या अलग अलग माध्यम कम्युनिकेशन के यह दिखाएंगे, तो उस दिन मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा गैप है जिसमें कम्युनिकेट लोगों तक करने में, और उसे हमें दूर करना चाहिए। हमें वो कहानी बतानी चाहिए जो सत्य है और एक्सिस्ट करती है। और फिर मैंने हरियाणा के एक गांव में गया, वहां पे मैंने 3 स्टोरीज रिकॉर्ड की सैनिक परिवारों की। और उनका सिर्फ मैं ये दिखाना उस वीडियो से पर्पस था कि एक सैनिक सिर्फ वर्दी में ही नहीं, अपने निजी जीवन में भी सर्विसेज के चलते बहुत त्याग करता है। और वो दिखा के सोशल मीडिया पे बना के मैंने जब वो डाला, तो सबसे पहला जो खुशी थी वो उन 3 सैनिकों के चेहरे पे थी जब उन्होंने मैंने वो दी कि साहब आपने तो हमारे ऊपर वीडियो बना के हमें हीरो बना दिया। हम तो 30-40 साल पुराने सैनिक हैं, हमने कभी सोचा नहीं था हमारी भी कभी वीडियो बनेगी। रीजन ये कि वीडियोस बनती हैं सिर्फ गैलेंट्री अवार्डीज को, वो भी चुनिंदा जो फेमस हो जाते हैं। अरे हम सैनिकों को कौन पूछेगा, तो उन्हें अपने आप को हीरो के रूप में पर्दे में देखते हुए उन्हें बड़ा अच्छा लगा, वो इमोशनल हो गए। और उन कहानियों को जब मैंने सोशल मीडिया हैंडला, तो जयपुर का एक बिजनेसमैन हुआ करता था जो दिल्ली में अक्सर बिजनेस ट्रिप पर आते थे, उन्हें में से एक सैनिक की काफी दर्दनाक कहानी थी, जिनका नाम सिपाही बनारती था। उस सिपाही बनारती की स्टोरी देखते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि गौरव जी मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दिल्ली में मुलाकात करवा देंगे। मैंने कहा बिल्कुल। एक समय फिक्स करके मैंने सिपाही बनारती और जेंटलमैन से मुलाकात कराई जो जयपुर से आए थे। जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी जेब से कैश 5,000 रुपए निकाले और सिपाही बनारती को ऑफर किया। लेकिन कहा जाता है कि सैनिक कितना भी दुख में हो, वो कभी भी अपनी समस्याओं को आगे नहीं रखता। उसने हाथ पीछे कर लिए, कहा नहीं नहीं साहब चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्लीज आप उन्हें थोड़ा समझाइए। और मैंने उनसे बोला सिपाही बनारती जी, ये यहाँ तक सिर्फ आपसे मिलने आए हैं और ये कोई ऐसा नहीं करें, सिर्फ आपकी सर्विसेज को थैंक यू बोलने का तरीका प्लीज रख लीजिए। उन्होंने रख लिया। और उस सिपाही बनाशी उस दिन बड़े इमोशनल हुए कि किसी इंसान ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई और उसे देख के कोई यहाँ मुझसे मिलने आया सिर्फ राजस्थान से, और यहाँ पे ये बड़े खुश थे जिसे मैंने पर्दे पे देखा उसे मिलने का सौभाग्य मिला। और इन दो को देख के मैं बड़ा खुश था कि काम बड़ा अच्छा है, कि अगर कोई जरूरतमंद हो और किसी के पास अगर रिसोर्सेज हो, उसके पास पर्याप्त फंड हो और वो अगर किसी की मदद करना चाहे, तो क्यों ना दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए, तो चीजें बदल जाती हैं। और वहां से हमें लगा कि वी शुड वर्क एज अ ब्रिज, हमें एक ब्रिज की तरह काम करना चाहिए और दोनों को जोड़ना चाहिए। वहां से इंस्पिरेशन।
आसान नहीं था ये सब करना। गौरव ने उत्तर प्रदेश के गांव के प्रधानों को फोन करना शुरू किया कि आपके यहाँ कोई रिटायर्ड फौजी तो नहीं रहता है। उनकी ये मुहिम चल पड़ी। कैसे उन्होंने इन फौजियों को ढूंढा, उन तक पहुंचे, वे बताते हैं।
शुरुआत जब मैंने की थी तो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाक तो मिल गया था कि कुछ करना है, लेकिन कैसे करना है वो समझ में नहीं था। और ये केसेस ऐसे हैं जो आपको राह चलते नहीं मिलेंगे, ये आपको खोद के निकालने पड़ेंगे। तो शुरुआत में कैसे ही मिले, तो मैं एक बार मैं हेडक्वार्टर्स गया और मैंने पूछा कि क्या मुझे ये ऐसे केसेस मिल सकते हैं जहाँ आपको कोई कारण से उन्हें डिले हो रही है मदद पहुंचाने में फौजी परिवारों को, या किसी कारणवश नहीं पहुंचाई जा सकती है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो मुझे आंसर आया कि नहीं, जो हो सकता था या जो हो रहा है वो हम संभव प्रयास कर चुके हैं और हम मदद कर चुके, ऐसा कोई भी केस नहीं है। तो सीधे मना कर दिया गया। तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि वाकई में कल अगर कोई विडो हुआ है या कल कोई शहीद परिवार हुआ है, क्या आज उसे इतनी जल्दी मदद मिल गई होगी, या वाकई में इतना क्विकली सरकार काम या फौज काम करती है। तो मेरी इतनी था और मेरे लिए एक सवाल भी था। मैं उस सवाल के साथ वहां से निकल गया और मैंने फिर क्या किया, मैंने अपने भाई के साथ मिलकर यूपी के प्रधानों का डेटा निकाला, गाँवों के प्रधानों का, और वहां पे उन प्रधानों को कॉल करना स्टार्ट किया। उनके फोन नंबर्स मिल गए। कहा है कि गांव में आज भी लोग हाउस नंबर से नहीं जानते हैं, किसी का नाती किसी का पोता उसके नाम से जानते हैं, और फौजी भी चुनिंदा उंगलियों पे होते हैं। तो मैंने कॉल किया कि आपकी जानकारी में कोई ऐसा फौजी हो जहां पे हम उनकी मदद कर सकें तो आप प्लीज मुझे बताइए। किसी ने बोला साहब ऐसा कोई नहीं है, किसी ने बोला कि सर होगा बताएंगे, एक ने मुझसे बोला साहब मैं एक शादी में आया हूँ, 2 दिन बाद मैं गांव पहुंचूंगा, मेरी नजर में एक परिवार है, मैं आपसे उसे कनेक्ट कराना चाहूंगा। और उन्होंने मुझे केस से कनेक्ट कराया जो कि फैजाबाद यूपी से था। जब उनसे कनेक्ट किया तो हमने उसके ही परिवार के दोनों बच्चों की फीस के लिए हमने उसी स्कूल में बात किया जिसमें एक बच्चे की फीस हमने 12th तक वेव ऑफ कराई और दूसरी का हाफ दे देते थे, और वो भी हम देते थे हाफ करवा के। और वो हमारा फर्स्ट केस था। उस केस को हमने करने के बाद हमने उसके यूनिट रेजिमेंट रिकॉर्ड और अलग अलग डिपार्टमेंट को लिखा कि हमने ये मदद की है। तो ये बताने का ये नहीं था कि हमने बहुत बड़ा काम किया, बताने का ये पर्पस था कि हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज उसमें हमारा सहयोग दीजिए जिससे कि हम आपके हेल्पिंग हैंड बन सकें। और कहा जा रहा है दूसरे दुखियारे को जानता है जैसे एक सफल व्यक्ति दूसरे सफल व्यक्ति को जानता है। फिर वर्ड ऑफ माउथ प्रचार हुआ, लोगों ने इंटरनेट पर सर्च करना स्टार्ट किया, और आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अलग अलग वेलफेयर डिपार्टमेंट्स, आर्मी यूनिट्स, रेजिमेंट रिकॉर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, इनके द्वारा हमें केसेस मिलते हैं। तो अब लोग जो फौजी डिपार्टमेंट से वो खुद भेजते हैं, लोगों को वर्ड ऑफ माउथ से प्रचार हुआ है तो वो लोग खुद डायरेक्टली रिलुकते हैं नेट पे सर्च करके। तो आज एक्सेसिबिलिटी अलग हो गई है, बदल गई।
गौरव की इस पहल से बहुत से वेटरन्स की मदद हुई और अभी भी हो रही है।
हमने ऑफिशियली 9 साल का वक्त हो चुका है काम करते हो, और अनऑफिशियली हमें करीबन 10.5 साल के आसपास का वक्त हो गया है काम करते हुए, और पिछले 9 सालों में हमने करीबन 3.5 ज्यादा जरूरतमंद सैनिक और उनके परिवारों की मदद की है, और आप ही ने 140 से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं जब तक उनकी लास्ट सांस तक ये मदद जाती रहेगी, जब तक वो धरती पे जीवित हैं। तो हमने अपने प्रोजेक्टों को इस तरीके से बनाया है जिससे कि कभी भी कोई भी जरूरतमंद और सैनिक परिवार खड़ा हो तो उसे हम खाली हाथ ना भेजें, उसकी जरूरत कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोजेक्ट में समा जाए। तो हमने ऐसे 6 प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसमें हम 3 प्रोजेक्टों में हर महीने मदद डिलीवर करते हैं, और 3 में ऑल ऑफ सडन कभी भी कोई भी केस आके खड़ा हो सकता है जिसे हम कहते हैं नीड बेसिस पे। ये यात्रा एक राज्य के 2 बेनिफिशरी से शुरू हुई थी, आज हम 22 से ज्यादा राज्यों में काम कर रहे हैं, और हमारे काम को देखते हुए हमें 15 हेड ऑफ द स्टेट जिसमें 12 गवर्नर 5 चीफ मिनिस्टर से अप्रिसिएशन मिला, साथ ही साथ 3ों सर्विसेज आर्मी नेवी एयरफोर्स के सीनियर मोस्ट ऑफिसर जिसमें जो अभी करंट एयर चीफ मार्शल एपी सिंह हैं उन्होंने भी हमारे काम को अप्रिशिएट किया, साथ ही साथ लास्ट ईयर हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी अप्रिशिएशन मिला, और बॉलीवुड और यानी कि इंडियन सिनेमा की कई हस्तियों ने भी हमारे काम को सराहा है, जैसे अनुपम खेर, बमन शंकर महादेवन, हेमा मालिनी, ऐसी कई दिग्गज पर्सनैलिटीज ने भी सराहा है।
गौरव की एक बात दिल को छू गई। हम लोग सिर्फ किसी खास दिवस पर देशभक्त हो जाते हैं, हमको हर दिन देशभक्त होना चाहिए।
मैं यहाँ पे आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए चाहूंगा कि सपोटा हीरोज की 2 खासियत है। जरूरतमंद सैनिक और उनके परिवारों की मदद करता है जो पहुंच के एग्जिस्टिंग यानी कि मौत का पॉलिसी के तहत कवर ही है। मदद अर्जेंट चाहिए लेकिन उसे लंबी कतार में खड़ा कर दिया जाता है, उसके नंबर का इंतजार करते हुए। तो हम यहाँ इन 2 चीजों में टोटली काम करते हैं, ये हमारी खासियत है। दूसरा, हम उन इलाकों में काम करते हैं जहाँ अक्सर लोग नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मली मौजूद है वहीं काम करना चाहता है, लेकिन हम वहां काम करते हैं जहाँ समस्याएं या प्रॉब्लम बढ़ती हैं। फार फ्लंग एरिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, आप लद्दाख ले आ जाइए, साउथ में आ जाइए, आप वेस्ट बंगाल आ जाइए, सिक्किम बॉर्डर पे पहुंचे वहां पे। दूसरी बात, मैं यहाँ पे अपारे देशवासियों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि डोंट बी पैट्रियोटिक फॉर 1 डे, बी पैट्रियोटिक फ्रॉम डे 1। आप एक दिन के लिए देशभक्त मत बने, चुनिंदा दिनों में देशभक्त मत बने, आप पहले दिन से देशभक्त बने। ये देशभक्ति सिर्फ आपको एक अच्छा देशभक्त नहीं बनाएगा, एक अच्छा नागरिक भी बनाएगा जो आप समाज और अपने परिवार और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा बेहतर कर पाएंगे। दूसरा, हम जब भी कुछ ऐसे मार्मिक दृश्य या फोटो या किसी चीज टकराती है फौजी फौज फौज से संबंधित, तो हम कहते हैं कोई इसकी मदद तो करे, सरकार क्या कर रही है। हम दूसरों के प्रश्न उठाने से अच्छा है कि हम आगे वो पहल करें, हम अपनी संवेदनाओं को सिर्फ शब्दों तक सीमित ना रखें, हमें उनपे एक्शन भी करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या या खामी आज के समाज में होती जा रही है जिसे मुझे लगता है हमें सोचने की जरूरत है।
सच है, हर सैनिक का स्वाभिमान है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके हित में भी खड़े हों। लखनऊ से फैसल फरीद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।